केशवर जी कहते हैं मुनि घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुषिमती को महान आनंद प्राप्त हुआ। ये अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तदांतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वे नारी गर्भवती हो गई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के संपादन में करने से पूर्व ही पुरातत्व विधि के द्वारा गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुनर्वसन और संस्कार किया। तत्पश्चात आठवां महीना आने पर कृपालु विश्वारण्य ने सुख पूर्वक प्रसव के लिए अभिप्राय गर्भ के रूप में सरमति करने वाला सीमांत संस्कार प्राप्त किया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए शुभ ग्रहों का योग आया। तब शुभ लग्न में भगवान शंकर जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुवा स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुषिमती के गर्भ से पुत्र में प्रकट हुए उस समय को वहन कहने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं से मुख पर वस्त्र से बन गए थे। अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं की धुंधुबद्धियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषणी हो गई। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता यक्ष किन्नर विद्याभर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं संस्कार किया। उस बालक के रूप का भेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात उसके पिता ब्रह्मचारों वेदों में कथित आशीर्वाद मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ होकर अपने लोक पर चले गए। तदुपरांत शिव भी अपने लौकिक गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को धारे। इसी प्रकार श्री हरि ने अपने लोक की राह की। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्रह्मांड देवता और ब्राह्मण यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वैद्याधन कराया। तत्पश्चात नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानंदन गृहपति को देखने के लिए वह नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर में तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा ये पुत्र परम भगवान के अनुरूप है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समावित और चंद्रमा समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय ये मेरा मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शिशुमती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई दाढ़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रिया अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के अंतर ध्यान हो सुनकर विश्वानर ने मूर्छा त्याग कर उठ बैठे। ए क्या हुआ छुसर में बोलते हुए कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरी अंतरात्मा में निवास करने वाला है कहाँ है? तब माता पिता को इस अध्ययन और शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश में उत्पन्न हुआ एक बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी पिताजी तथा बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ? यदि मैं आपके चरणों से अपने शरीर की रक्षा कर सकूं तो मुझे इस काल का अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। इस तुष्ट चंचल एवं अल्प बाल वाली मृत्यु की जो बात किया है माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो मेरा प्रयत्न करूंगा कि जिसमें मेरी मृत्यु भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाली सर्वक मृत्युंजय की भलीभांति आराधना करके महाकाल को जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि तब वे द्विज दंपत्ति जो शोक से संपन्न हो रहे थे, वे गृहपति के ऐसे वचन सुनकर जो अकाल में हुए अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव के शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के कर्ता मेघवान आदि महिमा से अच्युत होने के कारण वे शिव की रक्षा मणि है। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुनि माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रतिज्ञा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वहां से चले गए और नारायण आदि देवताओं के लिए दुष्प्राय महाप्रलय का संताप करने वाले विनाश करने वाले विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी वाली हर पत्नी गिरजा से विशुभूत थी वहां पहुंचकर वे विप्र पहले मणिकार पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धि गृहपति ने परमानंद को त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने के लिए शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और ये सच कह रहे थे कि ये लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो आज मेरा जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस चराचर त्रिलोकी में मुझ पे बढ़कर धन्यवाद का दूसरा पात्र कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्य उदय होने से दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही है जिसके कारण आज मैं कृत्य कृत्य हो रहा हूँ। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार आनंद रूपी रमो द्वारा पारण करके गृहपति ने शंभु दिन में सर्वतकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसा घोर नियमों को स्वीकार किया जो अक्षतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कार थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का एक वर्ष बीत गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे उस वचन को सत्य या करते हुए वृद्धारी इंद्र उनके प्रकट बोले, विपर मैं इंद्र हूँ, मैं तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ, तुम वर मांगो, तुम्हारी मनोकामना क्या है मैं पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन में जानता हूँ कि आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृष शस्त्रों में आपसे वर याचना करना नहीं चाहता, मेरा वरदायक तो शंकर जी हैं। इंद्र बोले, शिशु शंकर मुझसे भिन्न थोड़े हैं, अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति का पाक्षासन आप अल्लया का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है, न आप जाइए क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुनि गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र से क्रोध से लाल हो गए। वे भयंकर वज को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने की अत्यंत करने लगा और बस उठ उठ बोल, तेरा कल्याण हो, तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके कनेल कमत्र और नील कमंत्रण और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वंगमांग गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं आदि से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर जब गृहपति समझ गए कि ये महादेवी हैं, तब वह हर्ष के मारे अपने नेत्रों में आंसू छलक लाए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भुलाकर चित्रकूट एवं त्रिपुप पर्वत की भांति निश्चल खड़े हो गए। जब वे सत्वन करने और नमस्कार करने अथवा कुछ कहने में समर्थ न हो सके तो तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, निकेश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं ही उस लिंग में समा गए। इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अन्वय अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है उसका वर्णन किया है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्वन स्त्री अग्नि प्रवेश कर जाती है वे सबके सब अग्नि शरीर की तेजस्वी होती है। इस प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचिंगा का सेवन करने वाले हैं वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त भोज की लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि इष्टि करता है वे अग्नि के सनिकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी भी अनाथ मृत का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है वह अग्निलोक में प्रशासित द्विजों के परम कल्याण का कारक बनता है। वही निश्चय रूप से गुरुदेवता व्रत तीर्थ आथाड़ सब कुछ है, जितनी अपावन वस्तुएं वह सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती है, इसलिए अग्नि को पावक कहा गया है। ये शंभु की प्रत्यक्ष तेजस्वी मूर्ति है जो सृष्टि के रचना करने वाली और संहार करने वाली है। इसके बिना कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दही और खाण आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं।